Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। सुनते रहिए दिल से दिल तक पॉडकास्ट विद अभिनंदन जिंदल।
अब तो सब यही कहते हैं कि गॉड क्या लाइट है, हम तो घर में बैठ के मेडिटेशन करेंगे। ऑनेस्टी है, प्योरिटी है, तो हम क्यों जाएं कहीं पे?
घर में वो माहौल नहीं है तो आपको डबल मेहनत अपने आप से करनी।
अगर आपको कहा जाए कि ऐसी कोई चीज़ हो या कुछ आपका ड्रीम हो जो आप इस दुनिया के लिए करना चाहते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी, वो कौन सी चीज़ होगी?
मुझे यही मेरा एक ड्रीम है अभी भी कि मैं जो है वो हिस्सा बनूं जो ईश्वर को मैं ग्लोरीफाई कर सकूं अपने जीवन के द्वारा।
हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ हैं जिनको हर कोई देखना पसंद करता है, चाहे वो कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो। और कोई सिचुएशन हो, सिलेक्शन ना हो रही हो, कोई बहुत टफ सिचुएशन आ गई और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, कोई एडवाइस करने के लिए नहीं है, तो मोबाइल निकालो और बस 5 मिनट की उनकी वीडियो सुन ली या देख ली, जो भी, तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, दिमाग काम करने लगता है कि सिचुएशन को हम कैसे ओवर पावर करें, ओवरकम कैसे करें। तो वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हमारी उषा दीदी हैं। ओम शांति।
ओम शांति।
आजकल कमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो सही प्रॉपर गाइडेंस मिलना भी आजकल की यूथ यही बोलती है कि यार अब तो सब यही कहते हैं कि गॉड क्या लाइट है, हम तो घर में बैठ के मेडिटेशन करेंगे। ऑनेस्टी है, प्योरिटी है, तो हम क्यों जाएं कहीं पे? सेंटर की बात नहीं है, कहीं पे भी, कहीं मुस्लिम्स जो हैं इनफैक्ट वो दरगाह नहीं जाते, काफ़ी लोग क्रिश्चियन जो है वो चर्च नहीं जाते, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं हम कनेक्शन है हमारा। तो अब दीदी ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं तो आपको एक गाइडेंस मिलती है, आपका एक डिसिप्लिन, एक डेली रूटीन सेट होता है। लेकिन उसके लिए भी दीदी ज़रूरी है कि आप एक अच्छे गुरु को फॉलो करें, जो जिस चीज़ की आजकल जो यूथ है उनको कमी महसूस होती है। तो क्या ये टाइम नहीं है कि हमें खुद को अपने आप से ऑनेस्ट रहना चाहिए और जो बेसिक एसेंस था गॉड, प्योरिटी, उसको फॉलो करते हुए हमें?
ऐसा है, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि एक छोटा बच्चा है, उसको हम ABCD सिखा सकते हैं घर में, फिर भी स्कूल क्यों भेजते हैं?
जी।
चाहे कोई भी स्कूल में उसको रखे, उसकी कैपेसिटी को देखते हुए, अगर उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा है तो उस अनुसार उसको स्कूल में डालेंगे, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कम है तो उस अनुसार उसको स्कूल में रखेंगे, लेकिन स्कूल में तो भेजेंगे ना।
जी।
क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमें मालूम है घर में उसको पढ़ाने बैठेंगे ये पढ़ेगा नहीं, क्योंकि घर में एक माहौल ही नहीं है पढ़ाई का।
जी।
है ना, तो उसको हम कितना भी कहे तो भी उसका मन जो है लगेगा नहीं। लेकिन उसको स्कूल इसीलिए भेजते हैं ताकि वहाँ एक माहौल है, एक संघ है, वैसी बातें हैं, साधन है, तो उसकी सीखने की प्रक्रिया जो है फास्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह आप घर में भी कर सकते हो।
जी।
आपको किसी इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
जी जी।
है ना, लेकिन घर में वो माहौल नहीं है तो आपको डबल मेहनत अपने आप से करनी पड़ेगी।
जी।
घर में वो साधन नहीं है, या अगर साधन होते हुए भी आप बैठे हैं, कोई भी मिलने आ जाता है, कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि आप घर में बैठे हैं।
जी।
तो इसीलिए ये डिसिप्लिन जरूरी है कि आप सेंटर पर जाओ जहाँ पर सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं।
जी।
तो ज्ञान को ग्रहण करने की कैपेसिटी
जी
आपकी बढ़ जाती है।
जी।
इसीलिए आपको उस इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत है।
जी।
वहाँ जाएंगे, एक माहौल है, एक वाइब्रेशन है, ऐसा बातें हैं, तो उसको ग्रहण करना सहज हो जाता है।
जी जी।
है ना। हाँ, फिर उसके बाद जैसे अपनी क्रिएटिविटी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर्स आपको मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो खुद खोजने का प्रयास करते हैं।
जी।
और खोजने का प्रयास करते करते आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को उस अनुसार आप यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो मिले। हाँ, स्कूल में जैसे बच्चा जाता है ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी करना है उसको तो जरूरी नहीं कि रोज जाना ही पड़े। समझा, पीएचडी कर रहा है तो वो रिसर्च कर रहा है और रिसर्च के आधार पर वो अपनी थीसिस लिख रहा है, तो रिसर्च वो घर में बैठ के भी कर सकता है। रिसर्च वो जहां पर उसको साइट है वहां जाने की जरूरत और वहां जाकर के भी रिसर्च कर सकता है, या रिसर्च करने के लिए किसी न किसी के अंडर, अब वो योग्य है नहीं है लेकिन उसने उसमें फुल विश्वास रख करके उसमें चलना पड़ता है तभी तो रिसर्च कर सके।
बिल्कुल, बिल्कुल।
लेकिन रिसर्च हो जाने के बाद उसको जरूरत नहीं है, फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। तो स्कूल जाते जाते, फिर जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ साथ, फिर जैसे यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो फिर उसको रोज जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब रिसर्च करता है तो उस अनुसार उसको सारा अपने अंदर वो इकट्ठा करने की जरूरत तो है।
जी जी जी,
वो नॉलेज की बातें इकट्ठा करने की जरूरत, और उसके बाद उसको भी छोड़ सकते हैं। किसी के अंडर तो रहना ही होगा, भले मैं जानती हूँ वो योग्य है या नहीं है
जी,
लेकिन एक विश्वास के साथ उस फील्ड में तो है
जी।
जिस तरह से जिस प्रोफेसर के अंडर होकर के एक व्यक्ति पीएचडी करता है
जी,
तो वो प्रोफेसर कैसा भी हो लेकिन उसको उस फील्ड की नॉलेज तो है
जी।
तो उसके ऊपर विश्वास रख करके उसका सहारा तो लेना ही पड़ता है
जी,
उसके बाद वो सहारा भी छूट जाए कोई बात नहीं।
मतलब दीदी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ इंस्टीट्यूट जाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन मिलता है, आपकी ग्रोथ होती है, लेकिन किसी को आप फॉलो करें ये जरूरी नहीं है, सरेंडर खुद को करना ये भी
नहीं, नहीं जरूरी नहीं कि सरेंडर करना ही चाहिए तभी आपको मिलेगा, नहीं, बौद्धिक रीति से सरेंडर होने की बात है।
नहीं,
कि बुद्धि को आप समर्पित कर लो, जब आपने ईश्वर के आगे उसको समर्पित किया तो फिर जो भी निमित्त बन करके आपको वो ज्ञान दे रहा है ईश्वर उसी के द्वारा वही चीज निकलवाएगा जो मुझे चाहिए।
दीदी जैसे आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, जितने भी, जैसे मेरी मम्मी हैं वो ब्रह्म कुमारी काफ़ी टाइम से जाते हैं, और भी बहुत मेरे दोस्त हैं लड़के लड़कियां सब, तो उनके पेरेंट्स बहुत फॉलो करते हैं आपके बारे में स्पेशली, या बहुत, जब मैं आपसे 2 साल पहले मिला था तो मुझे आपके बारे में कहा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आप स्पिरिचुअली अभी बहुत एक ग्रो कर चुके हैं, आपको पीपल लुक अप टू यू, अगर आपको कहा जाए कि ऐसी कोई चीज़ हो या कुछ आपका ड्रीम हो जो आप इस दुनिया के लिए करना चाहते हैं इतना कुछ करने के बाद भी, वो कौन सी चीज़ होगी जो आपको कमी महसूस होती है आजकल?
मुझे यही मेरा एक ड्रीम है अभी भी कि मैं जो है वो हिस्सा बनूं जो ईश्वर को मैं ग्लोरीफाई कर सकूं अपने जीवन के द्वारा।
यूट्यूब पे आप कभी भी, हम कभी भी कुछ निकालें तो उसमें सबसे पहले ये आता है इस महीने में ये ट्रांसिट हो रहा है, इस महीने में ये हो रहा है, अभी 7:30 आ रही है, ये कन्या राशि वालों का तो ये हो जाएगा, इसको कैसे टैकल करना चाहिए?
देखो ऐसा है कि ठीक है, ये एक साइंस ज़रूर है एस्ट्रोलॉजी, हम उसको कोई डिस्कार्ड तो नहीं करते हैं, एक साइंस है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है समझो, और उसकी अपनी एक समझ है, लेकिन वो हर एक पर लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है।
अच्छा,
आज अगर कोई व्यक्ति, माना व्यक्ति कब कहेगा कि एस्ट्रोलॉजी का सहारा कब लेना शुरू करेगा, जब वो देखता है कि एक के बाद एक या तो नेगेटिव खबरें मिल रही है उसको, या प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आता है, एक में से निकला नहीं दूसरा प्रॉब्लम, तो उस समय उसको लगता है कि मैं किसी को पूछूं कि मेरा समय कैसा है
जी,
उसके मन में आता है
जी,
और इसीलिए जब वो किसी के पास जाता है और पूछता है कि भाई मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स है, ये है, अभी मेरा समय कौन सा चल रहा है आप बता सकते हो, और वो कहेगा हाँ भाई तेरे ऊपर तो ढैया चल रही है, या तेरे ऊपर तो 7:30 ही है, अभी राहु का ये है वो है, अभी जब ये बात कहते हैं तो उसके मन में तुरंत आता है कि इसका कोई उपाय
उपाय
है ना,
हाँ।
इसमें से बाहर निकलने का उपाय क्या,
उपाय क्या
है, क्या कोई उपाय? वो कहेगा हाँ है,
हवन करवा लो।
तो क्या हवन करवा लो, ये करवा लो, इतना लाख नाम लिखो उसको स्वाहा करना है, या कुछ दान करो, ये गाय को खिलाओ, फलाना करो
जी,
या गरीबों को दान करो। भाव उसका यही है कि जब आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, माना आपका पुण्य क्षीण हुआ है, अब आपको जब कहते हैं भाई 1,00,000 नाम लिखो आप भगवान का और एक यज्ञ हवन करो, उसमें स्वाहा करना होगा। अब नेचुरल है कि 1,00,000 नाम जब आप लिखेंगे
जी,
उस समय आपके मन में कोई बुरे विचार तो नहीं होंगे?
बिल्कुल जी।
या आप जब दान करते हैं तब आपके मन में कोई बुरा विचार तो नहीं होता है
जी?
भावार्थ ये है कि आप अपने जीवन में पुण्य शुरू करो, ये पुण्य क्षीण हो गया है, इसलिए एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप पुण्य करना आरंभ करो
जी। जी 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 जी।
तो पुण्य जब करने के लिए आपको कहते हैं कि भाई 1,00,000 नाम लिखो, हवन करो, ये करो, वो करो, गरीबों का दान करो, गायों को खिलाओ, ये तो भाव यही है कि आप पुण्य करो
जी।
और जैसे जैसे आपका पुण्य वृद्धि को पाने लगेगा, आप देखेंगे कि आप स्वयं उन प्रॉब्लम से मुक्त हो जाते हैं। और कई लोग ये अनुभव करते हैं
जी 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 जी
कि भाई मैंने फलाना उपाय किया, बड़ा काम किया
जी जी,
और बड़ा काम किया तो देखो मेरा प्रॉब्लम तो खत्म हो गया
जी 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 जी।
भाव इसके पीछे और कुछ नहीं, यही साइंस है कि आपका पुण्य क्षीण नहीं होने दो।
जी जी जी, ये तो कुदरती होना ही चाहिए हर इंसान में, आपकी इंटेंशंस प्योर ही होने चाहिए
लेकिन नहीं है ना आज की दुनिया के अंदर, नहीं है प्योर इंटेंशंस। और मनुष्य सोचते हैं भाई हुक और क्रुक, मुझे आगे बढ़ जाना है, जीवन में शॉर्टकट अपनाना है, तो शॉर्टकट में कई बार कई गलत काम कर लेता है वो
जी जी जी,
और वो गलत काम कितना उसके पुण्य को समाप्त कर देता है मालूम ही नहीं पड़ता है
जी जी जी। और वैसे भी दीदी, जैसे अगर आप अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए या अपनी लाइफ को सुधारने के लिए कोई मंत्र करते हो या तो उसका तो बिल्कुल आप यूज कर रहे हो ना फिर, हाँ। वो तो कोई फायदा नहीं
है। तो इसीलिए जो कहा भाई शनि की ग्रहाचारी है, तो शनि को कहा ही जाता है न्याय का देवता है
जी 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 जी,
तो न्याय तो करेगा ना, मानो आपके पुण्य समाप्त हो गए तो जो पाप हो रहे हैं उसका न्याय तो करेगा ही।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
तो इसीलिए उसको समाप्त करना है। तो भाव यह है कि आप पुनः प्योर इंटेंशंस को रखते हुए अच्छे काम करना शुरू करो
जी जी जी।
तो ये ग्रह का कोई इफेक्ट नहीं है
जी,
या ये ग्रह जो आपने पुण्य करना शुरू किया तो ये ग्रह आपको अच्छा ही फल
जी जी,
जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त जी
जी
करेगा
वो जी जी। हो सकता है कि रिजल्ट वैसा ना मिले जैसा आपने सोचा हो, बट एटलीस्ट अगर आप अच्छी लाइफ जिएंगे, आप लोगों के बारे में, आप चाहे कुछ नहीं भी कर सकते किसी के लिए, लेकिन अच्छा सोची तो कम से कम,
बिल्कुल बिल्कुल,
उसी से आपको खुद को भी अच्छा लगेगा।
इसलिए मेरे को तो ये अनुभव है कि जब मेरे को किसी ने कहा कि भाई आपके ऊपर तो ये काल सर्प योग है, काल सर्प योग है और आप माना बहुत बुरी तरीके से ये हो गए, और तो माना ये होनी होती थी
अच्छा
अगर मेरा कर्म सही नहीं होता
जी,
था तो
जी,
ये ग्रहों के हिसाब से उसने बता दिया, वो साइंस बता दिया क्योंकि ये जब ग्रह आते हैं तो नेचुरल है लोगों का अच्छे कर्म नहीं होता है तभी ये सब चीजें आने लगती है। तो ये एक योग बन रहा था
जी
हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए थे
जी,
इसलिए वो मुझे इफेक्ट नहीं कर सके
जी जी जी।
आए जरूर
जी जी,
ऐसे नहीं कि वो परीक्षा नहीं आई
जी,
जो योग बना था वो परीक्षा तो आई परीक्षा ले, लेकिन उस परीक्षा में पास हो गए
जी जी जी,
है ना
जी, जी।
सही रीति से उतरने हो गए, एकदम आगे बढ़ना, क्योंकि वो इंटेंशंस अंदर में
जी,
प्योर थे
जी, जी।
इसीलिए आगे बढ़ गए। और अच्छे कर्म करना छोड़ा नहीं
जी जी जी,
तो वो अच्छे कर्म हमको अच्छा फल ही प्रदान करेगा। तो भले वो एक होनी थी कोई जन्मों की, जिस कारण से वो कर्मों का हिसाब का जब योग बना तो वो योग आया जरूर
जी, जी, जी।
लेकिन इस जन्म का अगर मेरा पुण्य नहीं होता था तो वो बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित करने वाले थे
जी, जी, जी।
मैंने जब उसके ऊपर सोचा तो मैंने वही सोचा कोई जन्मों का हिसाब होगा और उस हिसाब के कारण जो है वो सारी परीक्षा का योग बन रहा था
जी, जी, जी।
लेकिन जो इस जन्म के अच्छे कर्म है वो आते भी है लेकिन हमें खरोच तक नहीं दे
जी, जी, जी।
ऐसे चली जाती
जी, जी, जी।
ऐसे मैंने दूसरा भी अनुभव किया दुआओं की शक्ति, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जब हम कोई अच्छी बात सुनाते हैं किसी को और किसी को प्रॉब्लम्स में वो यूजफुल हो जाती है तो उसके अंदर से दुआएं निकलती है। तो दुआओं की शक्ति क्या कर सकती है कि जैसे एक बार हम जा रहे थे गाड़ी में और गाड़ी स्पीड में थी, 100 की स्पीड तो थी, अभी आजकल तो रोड्स अच्छे बन गए तो 100 की स्पीड तो होती है, और हमारे आगे एक ट्रक था, वो ट्रक अचानक जो है बंद हो पड़ गया रास्ते के बीच में। अब हमारी गाड़ी इतनी फुल स्पीड पर थी जो वो क्या कहते हैं एंटी ब्रेक सिस्टम काटने
जी,
वो उस समय उस गाड़ी के अंदर नहीं थी
जी, जी।
तो नेचुरल है कि वो टर्न कर नहीं सकते थे, इधर उधर ले नहीं सकते थे और सीधी गाड़ी अंदर चली गई। अब आप मानेंगे नहीं कि ट्रक के अंदर जा कर के जो पीछे का लोहे का हिस्सा आता है
जी,
इतना मोटा लोहा होता है, वो कांच को तोड़ करके एक फुट अरे एक इंच
जी,
पर आके रुक जाता है। सारा कांच तो मेरे उस पर था, जो विंडस्क्रीन पूरा आगे का वो पूरा ही आ गया। मैं वही सोचती रही कि एक इंच खाली रह गया ये
जी, जी, जी।
अगर एक इंच और ज्यादा जाता था तो ऑन द स्पॉट डेथ होनी थी है ना। लेकिन सारा विंडस्क्रीन टूट जाने के बाद एक खरोच तक नहीं आई, गाड़ी पूरी खत्म हो गई, स्क्रैप में डाल देनी पड़ी। उसमें से बाहर निकलने के बाद जब खड़े थे तो जो भी आता था इसमें तो कोई बचा नहीं होगा, पूरा अंदर चला गया है, पता नहीं क्या हाल हुआ, कहाँ लेके गए उसको पूछने। मैंने कहा हम ही हैं, हम ही बाहर निकले हैं उसमें से, कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं हुआ, मना ये आश्चर्य होता था
जी।
तब मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि दुआओं की शक्ति क्या कर सकती है, एक खरोच तक आने नहीं देती है। और ऐसा मेरे लाइफ में 3 एक्सीडेंट्स हुए,
अच्छा,
लेकिन तीनों एक्सीडेंट में एक खरोच तक नहीं आई, एक स्क्रैच तक नहीं हुआ है ना। एक बार हैदराबाद में थी मैं, वहां पर हम करीमनगर गए थे, वहाँ से आ रहे थे, वो ड्राइवर बहुत फास्ट चला रहा था, उसको बार बार हम कह रहे थे तुम स्लो चला
जी।
और कौन सी गाड़ी थी, ओमनी थी
जी,
मारुति की ओमनी जिसको डब्बा कहते हैं
जी, 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 बिल्कुल।
और हम 6 जने बैठे थे
जी,
है ना। अब 6 जने थे, इतनी फास्ट वो गाड़ी चला रहा था, बार बार हम लोग सभी उसको मना करें, लेकिन लास्ट एक टर्न आया, वो टर्न में वो ठीक से काट नहीं पाया,
अच्छा,
और जो गाड़ी रोल हो करके 1, 2, 3, 4 और खड्डे में जाकर गिरी। 4 बार तो रोल हुई, पूरा कांच चारों तरफ के टूट गए, सारी गाड़ी तो एकदम स्मैश हो गई, और उसमें हम 6 लोग निकले, लेकिन खाली जो आगे बहन बैठी थी उसको खाली यहाँ चश्मा पहना था, यहाँ चश्मा थोड़ा घुस गया, बाकी हम किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई। तो ये महसूस किया कि दुआओं की शक्ति क्या नहीं कर सकती,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
है ना,
बिल्कुल।
तो ये कई बार अनुभव है
बिल्कुल
कि होनी होती है, हम उसको ड्रामा कहते कि ड्रामा फिक्स है
जी,
परंतु दुनिया में भी उसी ड्रामा शब्द को होनी कही गई है, होनी को टाले नहीं टले। जब ये कहते होनी को टाले नहीं टले
जी जी जी,
माना वो फिक्स है ना
जी, जी जी।
और किसने फिक्स किया है, मैंने ही अपने कोई पिछले कर्मों से उसको फिक्स किया है, तो वो तो आएगी ही, जो फिक्स है वो तो आएगी ही, लेकिन प्रेजेंट के कर्म अगर इतने पावरफुल है तो वो होनी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
जी 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 जी, कभी कभी तो दीदी ऐसे लगता है जैसे आपकी बातें सुनने के बाद कि नेचुरली बस हमें तो अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए, सबकी बस सबका अच्छा करो, अच्छा सोचो, जितना कर सकते हो करो, इन सब चीज़ों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या एस्ट्रोलॉजी, क्या स्पिरिचुअलिटी, ये तो बहुत एक्सटर्नल चीजें हो गई।
अच्छे कर्म करो बस,
दिल अच्छा लगता है, खुद ही लाइट महसूस होता है, ऐसा लगता है कि चलो मुझे दुख है कोई बात नहीं, सामने वाला खुश रहना चाहिए,
बस
इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती।
मेरे को कई बार कोई कहते हैं ना कि बहन जी लेकिन आज का जमाना झूठ का है और झूठ बोलना आसान है, तो मैं कहती हूँ अनुभव से मैं अंदर में सोचने लगती हूँ कि सच पूछो तो झूठ बोलना आसान है या सच बोलना आसान है। मेरा अनुभव ये कहता है कि सच बोलना आसान है, क्योंकि झूठ बोलने वाला एक बार झूठ बोलता है,
बिल्कुल,
लेकिन उसको हर बार याद रखना पड़ता है पिछली बार मैंने ये कहा था,
बिल्कुल बिल्कुल,
आज मैं अपनी बात को ही काटू नहीं,
बिल्कुल बिल्कुल,
उसको याद रखना पड़ता है, टेंशन कितना होता है अब क्या कहूँ, अब उसको क्या कहूँ, तो जितनी बार वो व्यक्ति सामने आता है उतनी बार उसको सफाई देने के लिए हर बार जो झूठ बोलना पड़ता है और हर बार का झूठ उसको याद रखना पड़ता है, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आसान कहाँ है।
बिल्कुल 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 बिल्कुल,
तो सच बोलना कभी टेंशन क्रिएट नहीं कर सकता है, सच बोलना इतना आसान है अगर, हाँ लेकिन सच बोलने से कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अरे झूठ बोलने बाद में जैसे ही आपकी ही कोई बात आपकी बात को काटेगी, उस समय वो प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो कितनी बड़ी होगी, रिश्ते खराब होंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कितनी बड़ी होंगी। तो ये सच बोल करके अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती भी है उसको आप ठीक कर लो, मैनेज कर लो, तो उस समय मैनेज हो भी जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल,
उससे क्यों डरते हैं।
बिल्कुल,
अगर उससे डर करके, उस छोटी सी प्रॉब्लम को डर करके, झूठ बोल करके हर बार झूठ बोलना, और उसके बाद जिस दिन पकड़े गए वो झूठ हमारा प्रत्यक्ष हो गया,
बिल्कुल,
तो उसके बाद तो किसी का विश्वास ही नहीं रहेगा,
रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाती है। पहले तो चलो सिर्फ रिलेशन खत्म होता, लेकिन अब तो रिस्पेक्ट ही खत्म
हो जाता है। तो मैं तो कई बार सोचती हूँ झूठ बोलना आसान नहीं है, सच बोलना आसान है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे सारी बातें करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। पर्सनली मुझे दो तीन आपके और भी बहुत सारी बातें करनी थी, पर आपके पास अभी वक्त भी नहीं है, तो अगर किस्मत में हो तो ज़रूर वापस आपसे मुलाकात होगी। बट आई होप कि जो भी आपने कहा वो सब लोगों को जो भी देख रहे हैं उनको हमेशा जैसे आप इंस्पायर करते आए हैं, और उनको इंस्पिरेशन मिले, जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर हों, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने बात बताई थी कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो समबडी, आपको खुद अपने आप के साथ सच्चा रहना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, और आपको सिर्फ एक ही को फॉलो करना है, अगर किसी को करना तो वो है गॉड, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी प्योर। तो थैंक यू सो मच दीदी, ओम शांति। तो आज का हमारा सेशन था उषा दीदी के साथ, आई होप आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आगे हम वापस से मिलेंगे। थैंक यू।